नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। हिंद महासागर में अमरीकी पनडुब्बी के हमले में ईरानी युद्धपोत के डूबने के बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष गहरा गया है। 78 नाविकों को बचा लिया गया है, 101 नाविक अब भी लापता हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि ईरान के युद्धपोत पर यह हमला द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहला हमला है। इससे पहले श्रीलंका के अधिकारियों ने कहा कि युद्धपोत के चालक दल को सुरक्षित निकाल लिया गया है और कई शव बरामद हुए हैं।
यह घटना गोल से लगभग 40 समुद्री मील दक्षिण उस समय हुई जब जहाज भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भाग लेने के बाद ईरान लौट रहा था। श्रीलंकाई अधिकारियों ने बचाव कार्यों के लिए जहाज और विमान तैनात किए। श्रीलंकाई नेवी ने कहा कि उन्होंने कई चालक दल के सदस्यों को बचा लिया है और समुद्र से कई शव बरामद किए गए हैं। कम से कम 75 नाविकों के घायल होने की सूचना है, जबकि 100 से भी अधिक लोग अभी भी लापता हैं। हिंद महासागर में खोज और बचाव अभियान जारी है। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
ईरान की राजधानी तेहरान में प्रशासन से जुड़े बासिज और आंतरिक सुरक्षा कमान केंद्रों पर इसराइल के हमलों से पश्चिम एशिया में जारी संकट और गहरा गया है। इसराइली रक्षा बल IDF ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान देश भर में नियंत्रण बनाए रखने के लिए इन कमान केंद्रों का इस्तेमाल करता है। IDF ने ईरान के मिसाइल लॉन्चरों और अन्य प्रणालियों को भी निशाना बनाया। अमरीका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी के अनुसार 28 फरवरी से ईरान में 1097 नागरिकों के मारे जाने की खबर है। इसराइल की वायुसेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ड्स ने आज चेतावनी दी कि जिसे ईरान का अगला सर्वोच्च नेता चुना जाएगा उसको भी खत्म करने पर विचार किया जाएगा। इससे पहले कल इसराइल की सेना ने विशेषज्ञों की सभा के एक भवन पर हमला किया। यह सभा धार्मिक नेताओं का समूह है जो ईरान के सर्वोच्च नेता का चयन करती है। अमरीकी युद्ध विभाग ने कहा कि कुवैत के शुएबा बंदरगाह पर ड्रोन हमले में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में शामिल अमरीकी सेना के 4 रिजर्व सैनिक मारे गए हैं। इस बीच पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान साइप्रस पर हमले के बाद ब्रिटेन और फ्रांस साइप्रस में युद्धपोत और वायु रक्षा उपकरण तैनात कर रहे हैं। उधर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी ने कहा है कि ईरान द्वारा परमाणु बम बनाने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नाकामी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करने से पहले अपने साथियों से सलाह नहीं ली थी। इस बीच विदेश मंत्रालय ने पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक टेलीफोन के जरिए इस नियंत्रण कक्ष से संपर्क किया जा सकता है। टोल फ्री नंबर है 1800118797। अन्य नंबर है 011-2301-2113। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। एयर इंडिया ने कहा है कि प्रभावित यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी यात्रा की तारीख बदलने या टिकट रद्द करने पर पूरा रिफंड लेने की सुविधा दी जाएगी। ये सुविधा इस वर्ष 28 फरवरी या उससे पहले की गई सभी कन्फर्म बुकिंग्स पर लागू होगी। पश्चिम एशिया, यूनाइटेड किंगडम, UK, ब्रिटेन और यूरोप आने जाने वाली उड़ानों के लिए ये सुविधा इस महीने की 10 तारीख तक की यात्रा के लिए मान्य रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली की शुभकामनाओं के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों और फ्रांस की जनता को होली के अवसर पर सुख समृद्धि और खुशहाली की शुभकामनाएं दी। T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में फिन एलन के 33 गेंद में सबसे तेज नाबाद शतक की बदौलत न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 170 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में न्यूजीलैंड ने यह लक्ष्य 13वें ओवर में ही हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।